अल्लामा इकबाल पर ईरान में जितना काम हुआ है वो कहा जाता है, यानी ख़ुद पाकिस्तान में जिन्हें बहरहाल शायर पाकिस्तान कहा जाता है, उतना काम नहीं हुआ है। और मैं ये ख़ुद नहीं कह रहा हूँ बल्कि जितने बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं उन्होंने भी इस जानब इशारा किया है। इसकी वजह हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर डॉक्टर अली काउसी निजात तशरीफ़ रखते हैं जो तेहरान यूनिवर्सिटी में उर्दू ज़बान के प्रोफेसर हैं। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। बहुत बहुत खुश आमदीद
ज़ैदी साहब, आपको और नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ।
वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, ये जैसा कि मैंने अपने नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ किया है कि बहुत ज़्यादा ईरान में काम हुआ है, इसकी वजह क्या है?
जी तो जिस तरह आप जानते हैं को और नाज़रीन भी, इस वजह से ईरान जो है एक बड़ा मुल्क है और सकाफ़ती लिहाज से भी देखें और अदब के लिहाज से भी देखें जो है बहुत से शुआरा गुज़रे हैं हमारे, बहुत ऐसे ऐसी हस्तियां हैं जिनकी वजह से जो है ईरान जो है इंटरनेशनल सतह पर और ख़ास तौर पर मशरक और मगरब में एक अदबी शख्सियत की वजह से जाना जाता है।
बेशक।
और यहाँ जो है हमारा जो मौजू है ईरान में इकबालियात और इस पर शायर मशरक हकीमुल उम्मत के बारे में बात करना चाहते हैं, तो ईरान जो है इस हवाले से अल्लामा इकबाल को अहमियत इस लिहाज से देता है कि वो ऐसी शख्सियत हैं जो हज़रत आयतुल्लाह खामेनेई जो है उनकी शख्सियत से बहुत मुतासर हैं।
बिल्कुल
और उन्होंने भी कहा है कि ईरान का जो इंकलाबी इस्लामी इंकलाब है वो इकबाल का मरहून मिन्नत है, जिनकी वजह से ईरानी जो है अल्लामा इकबाल से मोहब्बत करते हैं। और ख़ास तौर पर अगर देखें हमारे निसाब में, यानी स्कूलों में कॉलेजों में जो हम बचपन से फारसी पढ़ते हुए आते हैं, तो उसमें इकबाल की जो ख़ास नज़में हैं उनको शामिल किया गया है। मिसाल के तौर पर खिताब जवानान अजम, जिस तरह आप भी जानते हैं, उसमें चुन चराग लाल सूजम दर खियाबान शुमा ए जवानान अजम जान मनो जान शुमा, और उनका एक शेर जो बहुत ही मारूफ़ व मशहूर है और जिस तरह हमारे जो रिसर्चर हैं स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि इमाम खुमैनी की तरफ उनका इशारा है, यानी इकबाल ने इस शेर में पराह रास जो है इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की जानब इशारा किया है, जिस तरह उन्होंने कहा है मीर सद मर्दी के जंजीर गुलामान बिशकनद दीदम अज रोज़न दीवार जिंदान शुमा। इस तरह जो है हम ये अशआर जो है इंकलाब इस्लामी ईरान के हवाले से बहुत अहम है और ख़ास तौर पर रहबर इंकलाब इस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और कई बार जो है जो तकारीब ईरान में हो चुकी हैं इकबाल के हवाले से उन्होंने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया है। जिस तरह 21 अप्रैल जो है 1938 जो है अल्लामा इकबाल एक इस फ़ानी दुनिया से जो है रुख्सत हो गए, और मज़े की बात है कि उस 22 अप्रैल जो है वो मलिकुश्शराए बहार जो है वो भी इस दुनिया से रुख्सत हो गए।
और उसी साल
नहीं, इसी साल में नहीं, बाद में।
अच्छा।
लेकिन मलिकुश्शराए बहार जो है इकबाल से बहुत मोहब्बत करते थे और इकबाल शनासी की जो खड़ी ईरान में हम जहाँ हमने मुताला किया है और रिसर्च किया है कि किस शख्सियत ने इकबाल को ईरान में मुतारिफ कराने में बहुत अहम रोल अदा किया है, तो इस सिलसिले में पहले ऐसे पाकिस्तानी शख्सियत हैं जिनका कभी शायद लोगों ने ज़िक्र नहीं किया, वो हैं डॉक्टर अब्दुल हमीद इरफानी। डॉक्टर अब्दुल हमीद इरफानी क़याम पाकिस्तान से पहले यानी ब्रिटिश इंडिया के दौर में ईरान में तैनात थे और वो मशहद में बतौर खैरसगाली सफ़ीर जो है ईरान में तैनात थे, और उन्होंने तकरीबन 1945 से लेकर 1947 तक मशहद में रहे, और उन्होंने पहला कदम जो उन्होंने उठाया वो ये था कि उन्होंने बज़्म इकबाल शुरू किया मशहद में, और बज़्म इकबाल की वजह से اقبال کی شناخت جو ہے ایران میں ہوئی، شاید اس سے پہلے ایرانیوں نے اقبال کے حوالے سے اتنا مطالعہ نہیں کیا اور اقبال کی شخصیت سے جو ہے وہ متاثر نہیں تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں تو مشہد میں آ گیا ہوں تو اچھا ہے کہ بزم اقبال کے توسط سے جو ہے وہ اقبال کی روشناسی کرا دوں۔ تو اس سلسلے میں کیونکہ ان کو فارسی بھی آتی تھی، وہ انگلش ٹیچر بھی تھے، ایرانیوں کے انگریزی پڑھاتے تھے اور ان سے فارسی سیکھتے تھے، کسی زمانے میں انہوں نے بھی بات کی ہے کہ میں نے سوچا کہ ایسا ہے کہ انگریزی سکھا دوں ایرانیوں کو اور ان سے فارسی سیکھوں، بعد میں انہوں نے جو ہے فارسی میں جو ہے شاعری شروع کر دی۔ تو اسی لیے تو ڈاکٹر عبدالحمید عرفانی کا نام جو ہے اقبال شناسی کے حوالے سے جو ہے بہت اہم ہے، انہوں نے کئی تصانیف جو ہے اقبال پر لکھی ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ بالکل شاید کسی نے اس سے پہلے جو ہے اس پر توجہ نہیں، اقبال ایران جو ہے اس میں انہوں نے ایران میں جتنے انہوں نے تجربے کیے ہیں اس کتاب میں انہوں نے لایا ہے کہ اس میں انہوں نے اقبال اور جتنے ایرانی شعرا ہیں ان سے ملے ہیں، حتیٰ کہ مصدق سے بھی ملے ہیں اس سلسلے، اور مصدق کے علاوہ ہمارے جو جید شاعر تھے ملک و شعراء بہار سے ملے، اور ملک و شعراء بہار جو ہے اس کے بعد جو ہے جناب اقبال سے بہت متاثر ہوئے،
ان کے انقلابی اشعار بھی تھے فارسی میں ملک و شعراء بہار کے،
حتیٰ کہ انہوں نے اقبال کے بارے میں نظمیں کہیں اور حتیٰ کہ پاکستان کے بارے میں انہوں نے نظمیں کہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بعد میں 1947 کے بعد جو ہے وہ جناب عرفانی صاحب واپس انڈیا گئے، اور قیام پاکستان کے بعد جو پہلا کلچرل اتاشی ہے پاکستان کا وہ ڈاکٹر حمید عبدالحمید عرفانی ہیں، دوبارہ ایران واپس آئے اور تہران میں تعینات ہوئے، کیونکہ اس وقت جو ہے پہلے جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان جو ہے وہ ایران آنا چاہتے تھے اور سفارتی سرگرمیاں ایران میں اتنی نہیں تھیں، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ ایران جائیں اور ایران میں جا کے کچھ ثقافتی لحاظ سے دیکھیں ایرانیوں کی جو نفسیات ہیں اس پر جو ہے بات کریں۔ تو اس سلسلے میں عبدالحمید عرفانی نے سفارتی سطح پر بہت کچھ کیا، یعنی بہت کچھ اقدامات کیے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ شروع میں آپ نے کہا کہ وہ بھی کافی انس رکھتے تھے ایرانیوں سے، تو یہ دو طرفہ یہ تعلق دراصل ہو گیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی اور ایران میں کن کن یعنی پہلوؤں سے کام ہوا ہے آپ کے اشعار پہ، علامہ اقبال کے اشعار پر؟
اچھا، جس طرح ایرانی جو ہے علامہ اقبال تو پاکستان میں علامہ اقبال ہی کہتے ہیں، لیکن ایرانیوں نے علامہ اقبال لاہوری بنا دیا، اور پہلی جو شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی کتاب، یعنی پہلی جو ایران جو پہلے ایرانی ہیں جنہوں نے اقبال کی شخصیت پر انہوں نے کتاب لکھی فارسی میں، وہ مشتبہ مینوی ہیں۔ مشتبہ مینوی نے اپنی کتاب اقبال لاہوری شاعر فارسی گوئے پاکستانی میں انہوں نے اقبال کو لاہوری بنا دیا، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوا ہے، لیکن انہوں نے لاہوری بنا دیا، اور اس کے بعد جو ہے سارے ایرانی جو ہے اس کو لاہوری ہی کہتے ہیں، ہمارے نصابات میں بھی شامل ہیں، اس کو ہم لاہوری کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مشتبہ مینوی کے بعد جو اگلی شخصیت ایرانی ایک فلسفی ہیں وہ علی شریعتی ہیں۔ علی شریعتی جو ہے فکر و فلسفے کے لحاظ سے جو ہے اقبال کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور اسلامی شاعر کی جو بات کرتے ہیں اقبال، تو اس لحاظ سے جو ہے انہوں نے پہلے مشہد یونیورسٹی میں، جو آج کل فردوسی یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے، پہلے ہم مشہد یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا تھا، تو اس میں ڈاکٹر علی شریعتی وہاں پڑھاتے تھے، تو انہوں نے روزنامہ خراسان میں ایک مضمون اقبال کے حوالے سے لکھا، उनको उस मकाला वो मकाला जो है बहुत पसंद किया गया। तो उसके बाद जो है उन्होंने हुसैनी इरशाद यानी तेहरान में उन्होंने एक तकरीर की, और तकरीर का जो मौजू था इकबाल मुसलह करन अखीर, जो है एक मुसलह रिफॉर्मर के तौर पर वो जाने जाते थे। तो इसलिए अली शरीयती जो है इकबाल से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और अपनी तकरीरों में उनके फ़िक्र व फ़लसफ़े से, हत्ता कि जिस तरह आइमे अतहार यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और फ़ातिमा ज़हरा अलैहि सलावतुल्लाह उनके हवाले से जो है वो बात करते हैं, क्योंकि इकबाल की शायरी का जुज़्व है।
जी बिल्कुल।
तो अली शरीयती जो है एक ऐसी शख्सियत हैं, उनकी तकरीरों का जो मजमुआ है माँ व इकबाल के नाम से छपा। जब माँ व इकबाल जो है तसनीफ उनकी सामने आई तो उसका उर्दू तर्जुमा भी मौजूद है लाहौर की जो खाने फरहंगी ईरान है उनकी लाइब्रेरी भी मैंने मेरी नज़र से गुजरी है माँ व इकबाल। तो शरीयती जो है इकबाल, उसके बाद जो है अगली जो शख्सियात हैं जो है वो इकबाल को मुतारिफ कराने में बहुत रोल अदा करते हैं। जिस तरह मैंने अब्दुल हमीद इरफानी का नाम आपके सामने पेश किया, तो अब्दुल हमीद इरफानी जो है दरअसल जो है इकबाल को ईरान में मुतारिफ कराने के लिए कई असातिज़ा फ़ारसी असातिज़ा के पास जाते हैं, और उनमें मलिकुशआरा बहार का नाम जो है ख़ास तौर पर सामने आता है, क्योंकि वो इकबाल की शख्सियत से मुतासर हो के उनके लिए नज़्म लिखते हैं। तो उसके बाद जो है अगली जो शख्सियात हैं जो सईद नफीसी हैं, तख्त सईद नफीसी भी पाकिस्तान का वो पाकिस्तान का सफ़र किया, फिर उस दौर में एक फ़ारसी शायर थे जो सादिक़ सरमत के नाम से जाने जाते थे और शायर मिलिय इनान के नाम से
उनको कौमी शायर के तौर पर, जी
सादिक़ सरमत यानी अब्दुल हमीद इरफानी के आने के बाद जो है इकबाल की शख्सियत से जो है रोशनास होते हैं। तो उसके बाद जो है वो उनके लिए तकरीबन 12 कसायद जो है वो लिखते हैं।